नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 के बीच ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 57% से अधिक बढ़ी। प्रदेश को औरंगाबाद के नवीनगर में बनने वाले अत्याधुनिक बिजली घर से 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। पटना जीपीओ में विदेश डाकघर खुलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्सल भेजना होगा आसान। और नवरात्रि के नवे दिन आज देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। सुबह से ही शक्तिपीठों, मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में वर्ष 2016-17 की तुलना में 2021-22 में 57% से अधिक की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की मासिक आमदनी 2016-17 के 8,059 रुपए से बढ़कर 2021-22 में 12,698 रुपए हो गई। परिवारों के औसत मासिक व्यय में भी वृद्धि हुई और ये 6,600 रुपए से बढ़कर 11,200 रुपए हो गया। इस दौरान बचत में भी बढ़ोतरी हुई और ये 9,100 रुपए से बढ़कर 13,200 रुपए हो गई। ग्रामीण परिवारों के बीमा कवरेज में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ये 25.5% से बढ़कर 80% तक पहुंच गई है। ग्रामीण किसानों के वित्तीय समावेशन विस्तार में किसान क्रेडिट कार्ड ने प्रभावी भूमिका निभाई है। पेंशन कवरेज में भी सुधार हुआ है और ये लगभग 19% से बढ़कर 23.5% हो गया है। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
प्रदेश को औरंगाबाद के नवीनगर में बनने वाले अत्याधुनिक बिजली घर से 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। इस संबंध में बिजली कंपनी और एनटीपीसी के बीच समझौता किया गया है। एनटीपीसी के प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने बताया कि नवीनगर में चालू वित्तीय वर्ष में दूसरे चरण का काम शुरू हो जाएगा और आगामी 3 सालों में बिजली का उत्पादन होने लगेगा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि इससे भविष्य में राज्य में होने वाली बिजली की खपत को पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर हस्तांतरण जारी किया है। इसके तहत बिहार को 17,921 करोड़ रुपए मिले हैं। केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 10% से अधिक है। यह हस्तांतरण राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और अपने विकास तथा कल्याण संबंधी व्यय का वित्त पोषण करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया है। राज्य सरकार ने दोहरी पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा तय कर दी है। इसके तहत पुरानी पेंशन के तहत आने वाले माता पिता की संतानों को पेंशन के रूप में मृतक माता पिता के उच्चतर वेतन का 50% और 30% ही मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार दिव्यांग संतानों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर इस सीमा का निर्धारण किया है। सीमा शुल्क आयुक्त डॉक्टर यशोवर्धन पाठक ने कहा है कि पटना मुख्य डाकघर जीपीओ में अब विदेशी डाकघर यानी एफपीओ खुलेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत जीपीओ प्रांगण को निर्यात माल की लोडिंग और आयातित माल उतारने के लिए एफपीओ घोषित कर दिया गया है। श्री पाठक ने कहा कि अब पटना देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां विदेशी पोस्ट ऑफिस के जरिए देश के बाहर सामान भेजने और प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले पटना में कस्टम क्लियरेंस की सुविधा नहीं होने के कारण सामान को कोलकाता के जरिए विदेश भेजना पड़ता था। श्री पाठक ने बताया कि एफपीओ से बिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्सल भेजना आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी झारखंड में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। श्री मांझी ने कहा कि वे एनडीए गठबंधन के अंतर्गत ही भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे के तहत जो सीटें उनके खाते में आएंगी उन्हीं पर पार्टी प्रत्याशी चुनाव में उतारेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। युवा संगम विभिन्न राज्यों के युवाओं का लोगों से संबंध मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। 18 से 30 वर्ष की आयु के युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण कराकर इसमें शामिल हो सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। प्रदेश में सरकारी और निजी विद्यालयों में बच्चों के घर से आने जाने में हर तरह की सुरक्षा की जवाबदेही स्कूल प्रबंधन की होगी। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजे गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के निर्देश के बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य के साथ सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा का जिम्मा भी स्कूल का ही होगा। आयोग ने इस संबंध में हर विद्यालय को अपनी वेबसाइट पर सूचनाएं अपलोड करने का निर्देश दिया है। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को देने की घोषणा की गई है। सुश्री कांग को गहन काव्यात्मक गद्य के लिए सम्मानित किया गया है। सुश्री हान कांग को उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। सुश्री कांग के लेखन की शुरुआत 1993 में लिटरेचर एंड सोसाइटी पत्रिका में उनकी कई कविताओं के प्रकाशन के साथ हुई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन आज देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। पूजा को लेकर हर तरफ श्रद्धा और उल्लास का वातावरण है। मान्यताओं के अनुसार माँ का यह स्वरूप सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। इस दिन माँ दुर्गा अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों, मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। श्रद्धालु सुबह से ही देवी मंदिरों के साथ ही पूजा पंडालों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिलों में पूजा पंडालों को आकर्षक कलाकृतियों से सजाया गया है। पटना में पंडालों को तिरुपति मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर की तर्ज पर सुसज्जित किया गया है। सीतामढ़ी जिले के पुरौना में इसरो की मिसाइल, बेगूसराय के बखरी में केदारनाथ धाम और हाजीपुर के डाकबंगला चौराहे पर बद्रीनाथ मंदिर और सराय बाजार में बेल्लूर मठ की तर्ज पर बनाए गए पूजा पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। अन्य जिलों में भी देश विदेश के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के आधार पर पूजा पंडाल निर्मित किए गए हैं। इन्हें देखने और माता के दर्शन के लिए राजधानी पटना समेत विभिन्न स्थानों पर देर रात तक लोगों की भीड़ उमड़ती रही। दुर्गा पूजा के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती के साथ संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेजों को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव के मद्देनजर राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राजधानी पटना में प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर इन पूजा पंडालों के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने के लिए सादी वर्दी में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार हमें उच्च आदर्शों को धारण करने और शाश्वत जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। यह दिवस दुनिया भर में बालिकाओं की लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व को रेखांकित करता है। एक रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों को सशक्त बनाने और उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह दिन दुनिया भर में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जहां लड़कियां समाज में आगे बढ़ सकें, अपने भविष्य का नेतृत्व कर सकें और उसे आकार दे सकें। भारत सरकार ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ान और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कई कदम उठाए हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लड़कियों के भविष्य में निवेश वैश्विक समाज के सामूहिक भविष्य में प्रत्यक्ष निवेश है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राज्य से मॉनसून की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य से मॉनसून अभी तक पूरी तरह लौटा नहीं है। हालांकि सूर्य के दक्षिणायन होने की शुरुआत के साथ ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के तापमान में कमी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 128 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना से 61 मामले नए मिले हैं। कटिहार रेल मंडल में बारसोई और सुधानी रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी के दो डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि इससे कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड के डाउन लाइन पर ट्रेन परिचालन बाधित हुआ है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम संस्कार से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, देश को गमगीन छोड़ रतन टाटा अनंत यात्रा पर। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पहले चरण में 2 लाख शहरी आवास दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 75,000 बूथ प्रभारी और हर बूथ पर 400 सदस्य बनाएगी भाजपा। प्रभात खबर ने राजधानी में उमड़ी भीड़ को तरजीह देते हुए लिखा है, हर कदम पूजा पंडालों की ओर बढ़ चला। आज अखबार लिखता है, इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस को पलटने की साजिश नाकाम। राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, दिवाली से पहले किसानों को करें फसल क्षति का भुगतान। और अब अंत में मुख्य समाचार। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 के बीच ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 57% से अधिक बढ़ी। प्रदेश को औरंगाबाद के नवीनगर में बनने वाले अत्याधुनिक बिजली घर से 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। पटना जीपीओ में विदेश डाकघर खुलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्सल भेजना होगा आसान। और नवरात्रि के 9वें दिन आज देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। सुबह से ही शक्तिपीठों मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।